सो मसीह में बुलाए हुए प्यारे भाई और बहनों, हम पहुंच गए हैं हमारी क्लास नंबर 34, जिसका नाम है प्रार्थना के ऊपर सबक, कि प्रार्थना कैसे करनी है। क्लास नंबर 34, लेसन ऑन प्रेयर, प्रार्थना के ऊपर सबक। तो आज की हमारी पढ़ाई में हम एक ऐसे विषय पे बात करने जा रहे हैं जो ईसाइयों को बहुत प्यारा है। प्रार्थना ईसाइयों को बहुत, ज्यादातर ईसाइयों को बहुत अच्छी लगती है, और आम तौर पे जिसको समझा नहीं गया है कि प्रार्थना का मतलब क्या है, प्रार्थना में क्या मांगना है, प्रार्थना में क्या बात करनी है, प्रार्थना किसको करनी है, सबसे पहले प्रार्थना किसको करनी है, यही समझ नहीं है। सो आज के सबक में हम ये सब सीखेंगे कि ये प्रार्थना क्या है और परमेश्वर का वचन प्रार्थना के बारे में हमें क्या सिखाता है, कैसे हमें प्रार्थना करनी है। पवित्र शास्त्र से आज हम देखेंगे, बाइबल से आज हम देखेंगे। आज हम देखते हैं संसार में बहुत से लोग और अलग अलग धर्मों में प्रार्थना को ये बोला जाता है कि परमेश्वर के साथ संगति, प्रार्थना है परमेश्वर के साथ संगति, परमेश्वर के साथ कम्युनियन, परमेश्वर के साथ बातचीत। और यहां तक कि ईसाइयों की अलग अलग जो मिशनें हैं, ज्यादातर जो चर्चेस हैं, उसमें बहुत सा समय और महत्व प्रार्थना को दिया जाता है। हम देखते हैं कितने लोग प्रार्थना करवाने आते हैं, कई बार तो हफ्ते में अलग अलग मीटिंग्स होती है, प्रेयर मीटिंग्स, प्रार्थना की मीटिंग्स जैसे बोलते हैं, बोलते हैं फास्टिंग प्रेयर है, ठीक है, कोई चेन प्रेयर करता है, मतलब चेन में प्रार्थना करती है, कोई रात रात भर घुटनों पे बैठ के प्रार्थना करते हैं। तो प्रार्थना अलग अलग तरीके से ईसाइयों में फॉलो की जाती है, लेकिन प्रार्थना सचमुच में है क्या, प्रार्थना का मतलब क्या है, ठीक है। प्रार्थना जो शब्द इस्तेमाल होता है, प्रेयर जो शब्द इस्तेमाल होता है, उसमें सब कुछ आता है, परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर का धन्यवाद, और हमारी विनतियां परमेश्वर की, परमेश्वर के प्रति, कि जो हम परमेश्वर को विनती करते हैं। और ये एक पर्सनल आपका रिश्ता है परमेश्वर के साथ, मतलब इसमें कोई मीडिएटर, प्रभु यीशु मसीह के अलावा कोई और मीडिएटर नहीं है इसमें, मतलब कोई और विचवई नहीं है, ये परमेश्वर के साथ डायरेक्ट कम्युनियन है, परमेश्वर के साथ डायरेक्ट बातचीत है आपकी, ठीक है। परमेश्वर के साथ एक आपका पर्सनल रिश्ता, जिसको बोलते हैं ना पर्सनल रिश्ता, वो है प्रार्थना। तो इतना हम जानते हैं प्रार्थना के बारे में, लेकिन आज हम वो पढ़ने जा रहे हैं जो हम प्रार्थना के बारे में नहीं जानते हैं, ठीक है। हाँ, बाइबल के नजरिए से प्रार्थना एक ऐसा सुंदर अवसर है, एक ऐसा सुंदर मौका है जो सबके लिए खुला है, जो सबके लिए अवेलेबल है, ठीक है, ऐसा हम मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रार्थना सिर्फ एक सिलेक्टेड ग्रुप के लिए है, चुने हुए लोगों के लिए है प्रार्थना, परमेश्वर के साथ कम्युनियन। आपने देखा होगा जब प्रभु यीशु मसीह इतने इतने लोगों को चंगा करते थे और 5,000 की भीड़ को खिलाते थे, कहीं पवित्र शास्त्र में प्रभु यीशु मसीह ने उनको बोला अपने घर जाके प्रार्थना करना, प्रार्थना में लगे रहना, ऐसा बोला नहीं? बोला ना, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह अच्छे तरीके से जानते थे कि प्रार्थना का अवसर कुछ खास लोगों के लिए है, हर एक के लिए ओपन नहीं है। ऐसा क्यों क्यों प्रभु यीशु मसीह ने जो इतनी बड़ी भीड़ आती थी उनको कभी नहीं बोला जाके घर जाके तुम हर रोज प्रार्थना करनी है, सुबह को प्रार्थना करनी है, शाम को प्रार्थना करनी है, नहीं बोला? ऐसा क्यों? पढ़ते हैं ये बात जो हैरानी वाली है और जो आज हमें समझनी है। प्रभु यीशु मसीह की सबसे बड़ी प्रार्थना बाइबल में कहाँ पे है? नहीं, एक पूरा चैप्टर है प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह ने की। यूहन्ना 17:9 पढ़ो। यूहन्ना 17 पूरी प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना है।
यीशु की महायाजक के लिए प्रार्थना स्वयं के लिए।
मैं
उनके लिए विनती करता हूँ, संसार के लिए विनती नहीं करता।
अंडरलाइन करो, मैं संसार के लिए प्रार्थना नहीं करता। मैं संसार के लिए विनती नहीं करता हूँ, किन के लिए करता हूँ आगे पढ़ लो।
परंतु उन्हीं के लिए जिन्हें तूने मुझे दिया है।
तो ये बात देख लो, आज तक हम तो प्रार्थना ये करते हैं कि प्रार्थना का अवसर हर एक के लिए खुला है, हर एक के लिए खुला है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के लिए प्रार्थना का मतलब ये नहीं था। प्रार्थना एक बड़ा पवित्र और प्योर शुद्ध रिश्ता है परमेश्वर के साथ, पर्सनल रिश्ता है परमेश्वर के साथ। अब देखो, प्रभु यीशु मसीह संसार का बचाने वाला है या नहीं है? संसार का बचाने वाला खुद बोल रहा है कि मैं संसार के लिए प्रार्थना नहीं करता। क्या आप इस पे विश्वास करते हो? क्यों प्रभु यीशु मसीह ऐसा बोल रहे हैं? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ये इसलिए ऐसा बोल रहे हैं क्योंकि प्रार्थना बाइबल के अनुसार एक बड़ी खास चीज है जिसको हमें समझना है, जिसको हमें समझना है। इस बात को समझने के लिए हमें थोड़ा इतिहास में जाना पड़ेगा। परमेश्वर और इंसान के रिश्ते में क्या हुआ था, परमेश्वर और इंसान के रिश्ते में क्या हुआ था और क्यों हर एक इंसान परमेश्वर के सामने नहीं जा सकता। तो ये घटना हुई थी उत्पत्ति में। पढ़ते हैं जब केन ने आबिल को मार दिया, उत्पत्ति 4:14 में देखते हैं।
देख, तूने आज के दिन मुझे भूमि पर से निकाला है और मैं तेरी दृष्टि की आड़ में रहूंगा और धरती पर भटकने वाला और भगोड़ा रहूंगा और जो कोई मुझे पाएगा मुझे घात करेगा। इस कारण यहोवा ने उससे कहा, जो कोई कैन को घात करेगा।
नहीं नहीं, बस इतना काफी है। बोलता मैं तेरी दृष्टि में रहूंगा लेकिन क्या करूंगा? क्या लिखा है हिंदी में?
पर भटकने वाला और भगोड़ा रहूंगा।
भगोड़ा, लेकिन इंग्लिश में है फ्रॉम थाई फेस शैल आई बी हिड। मतलब मैं तुम्हारा सामना नहीं करूंगा, मैं तुम्हारे चेहरे से छिपा रहूंगा। ठीक है, भगोड़ा यही होता है, भगोड़ा छिपने वाला।
ठीक है, भागना करना,
हाँ भागना। तो ये जो कैन शब्द है ये तो एक चिन्ह है, लेकिन ये सारी मनुष्य जाति की स्थिति है कि परमेश्वर और मनुष्य जाति के बीच में एक सेपरेशन हो गई, टूट गया वो रिश्ता। हाँ, कैन के मतलब कैन का मतलब सारी मनुष्य जाति। पाप में किया तो मतलब हाँ, वो परमेश्वर के साथ कम्युनियन, वो परमेश्वर के साथ संगति खत्म हो गई, सेपरेशन हो गई। और तब से सारी मनुष्य जाति पर अपने बनाने वाले पिता परमेश्वर के बारे में, अपना इस सृष्टि को रचना करने वाले का ज्ञान भी भटक गया। जब परमेश्वर के साथ संगति ही नहीं रही तो ज्ञान कैसे रहेगा? सबसे पहली जो ज्ञान की जो सीढ़ी है वो ये है, परमेश्वर का भय ज्ञान की शुरुआत है। नीति वचन में यही बोलते ना, परमेश्वर का भय ज्ञान की शुरुआत। तो तब से सारी मनुष्य जाति अपने परमेश्वर के बारे में ज्ञान खो गई, नहीं ज्ञान रहा, और सब कुछ खत्म हो गया, रिश्ता भी खत्म हो गया। तो इसीलिए परमेश्वर आने वाले समय में अपने राज्य में, जब राज्य आएगा, सारी मनुष्य जाति की समझदारी की आंखें खोलेंगे। वैसे तो सबकी आंखें खुली हैं, लेकिन समझदारी की आंखें खुलनी है जब परमेश्वर का राज्य आएगा।
ज्ञान की आंखें,
यस, समझदार। पढ़ लो ये बात, भजन संहिता 22 का 27, भजन संहिता 22 का 27।
पृथ्वी के सब दूर दूर देशों के लोग उसको स्मरण करेंगे।
स्मरण करेंगे मतलब याद करेंगे, हाँ,
और उसकी ओर फिरेंगे।
देखो, तो ये समय अभी नहीं है, ये परमेश्वर के राज्य में होगा। इसीलिए जब आप मुझे बोलते हो ना, ब्रदर मैं प्रार्थना कर रहा हूँ अपनी कॉलोनी को बदलने के लिए, मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, ब्रदर इनका समय अभी नहीं है, ये राज्य में बदलेंगे। अभी सिर्फ एक चुनाव चल रहा है, कोई खास चुनाव चल रहा है, ये राज्य में होगा जब ये सारी जातियां, सारी पृथ्वी के लोग याद करके मुड़ेंगे, अरे ये है हमारा परमेश्वर। तब खुलेंगी समझदारी की आंखें, तब होगा असली ज्ञान के, वाह ये है हमारा परमेश्वर, ठीक है। लेकिन आज स्थिति ये है कि सारी मनुष्य जाति भूल चुकी है, ज्ञान नहीं है परमेश्वर के बारे में, अपने बनाने वाले के बारे में। मैं अन्य जातियों की बात नहीं करता हूं, मैं क्रिश्चियंस की भी बात करता हूं। 99.99% क्रिश्चियंस को ये नहीं पता कि पिता परमेश्वर कौन है और यीशु मसीह कौन है। आपने देखा होगा, आपने भी की होगी, मैंने भी की थी, प्रार्थना हम कैसे करते हैं, प्रभु यीशु मसीह को ही प्रार्थना करते हैं बाप मान के, और प्रभु यीशु मसीह के ही जरिए मांगते हैं। ये बात लॉजिकली बनती है क्या? प्रार्थना तो अल्टीमेटली हम प्रभु यीशु मसीह को ही करते हैं, हे हमारे यीशु पिता, हम आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ये सेंस बनती है, यही चीज है। आज दुनिया बस बड़बड़ाए जा रही है बिना सोचे, कोई सोचता नहीं है कि मैं किसको प्रार्थना कर रहा हूं, मुझे क्या मांगना है, क्या बातचीत करनी है, मुझे प्रार्थना में हुक्म देना है या प्रार्थना में विनती देनी है, ये भी देखना है, ठीक है। सो कुछ ऐसी बातें, ठीक है। हमने देखा पुराने नियम में कुछ लोग थे, ठीक है, इनोक था, नूहा था, इब्राहिम था, इसाक था, यकूब था, इनको पता था परमेश्वर के बारे में, ज्ञान था। इनोक को तो इतनी प्रिविलेज थी, उसने आदम से सुना होगा, आदम से फेस टू फेस सुना होगा परमेश्वर के बारे में, उस वक्त बाइबल तो नहीं थी, तो ज्ञान कहां से आया इनोक को? आदम से ही आया होगा, आदम ने अपने तजुर्बे बताए होंगे, ऐसे परमेश्वर ने हमें रचा, ऐसे ये हुआ, ऐसे सब कुछ, क्योंकि वो 10वीं पीढ़ी थी और वो जीवित था उस वक्त, ठीक है। तो बाद में यही ज्ञान किसके पास, याकूब की मृत्यु के बाद ये ज्ञान किसके पास पहुंचा? पिताओं के युग के बाद ज्ञान किधर गया? यहूदियों का युग, यानी इज़राइल देश को परमेश्वर के बारे में पता था, ज्ञान था, वो परमेश्वर के को अप्रोच करते थे देश होने के नाते, ठीक है। Amos 3:2 पढ़ लो, Amos 3:2, जब परमेश्वर बोल रहे हैं कि सारी पृथ्वी के घरानों में से मैं सिर्फ तुमको जानता हूं,
हाँ जी, पृथ्वी के सारे कुलों में से मैं केवल तुम पर मन लगाया।
सो मन लगाया मतलब इज़राइल देश, यहूदी लोगों पे मन लगाया। सो परमेश्वर ने उनको पहचाना, उनके साथ बातचीत की, अभी इंडिविजुअली नहीं, एक एक से नहीं, इज़राइल देश एक एक से बात की परमेश्वर ने, इनोक, नोहा, इब्राहिम, इसहाक, याकूब, उसके बाद इसराइल देश, पूरा जो याकूब के 12 पुत्र थे, ठीक है। और परमेश्वर ने इस समय के दौरान उनके साथ एक वाचा भी बांधी, निर्गमन 19 का 5 में पढ़ लो, निर्गमन 19 का 5।
इसलिए अब यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे और मेरी वाचा का पालन करोगे तो सब लोगों में से तुम ही मेरा निज धन ठहरोगे,
तो
समस्त पृथ्वी तो मेरी ही है।
सो सारी पृथ्वी मेरी है, लेकिन पृथ्वी के लोगों में से सिर्फ तुम हो मेरा धन, सही ना। और ये किसके बारे में बात हो रही है? इसराइल देश। और इसी समय परमेश्वर ने दी इनको कानूनी व्यवस्था, वो जो कानून बोलते हैं ना, 10 हुक्म, जो 10 कानून दिए मूसा के जरिए सिनाई के पहाड़ पे, ठीक है। और इसमें परमेश्वर ने एक खास वाचा बांधी, इसराइल को एक अवसर दिया, एक मुख्य याचक जो आरोन था, उसके जरिए हमने देखा पिछली क्लासेस में 31 और 32 में कि तंबू में कैसे बलिदान होते हैं। सबसे पहला बलिदान होता है बैल का, ठीक है, उसके बाद बलिदान होता है बकरे का, ठीक है। तो उसके जरिए उनके पाप, उनके जो पापों से उनको क्या मिल जाती थी? क्षमा मिल जाती थी। और यही हमने पढ़ा था लाजर की और अमीर की क्लास में भी। लाजर कौन है? अन्य जाति। अमीर कौन है? इसराइल देश, ठीक है। सो ये सारी बातें हम देख चुके हैं। परमेश्वर ने इसराइल को कानून दिया, 10 हुक्म दिए, ठीक है, और पापों से प्राश्चित और पापों से क्षमा करने का अवसर दिया। ये सारी चीजें, जो ये जो सारी बातें थी, ये अन्य जातियों पे लागू नहीं होती थी, ठीक है। सो इस तरीके से वो अपने पापों से क्षमा होते थे, प्रार्थना में परमेश्वर के पास जाते थे। सिर्फ उनके पास ये अवसर था और उनको ये अधिकार था, उनके पास ये मौका था, ठीक है। तो ये इसको बोलते हैं यहूदी युग, जब परमेश्वर का सिर्फ ध्यान किस पे था? इसराइल देश, यानी यहूदियों पे था। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह का पहला आगमन हुआ तो ये अवसर, प्रभु यीशु मसीह का आगमन था यहूदी युग की कटाई, वो देख रहे हैं हम कटाई का समय बोला ना, तो कटाई उसके बाद उस, लेकिन वहां से शुरू हो रहा है सुसमाचार युग, तो वहां से अन्य जातियों का भी उद्धार की बात चल रही है, लेकिन अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे। तो जब प्रभु यीशु मसीह का पहला आगमन हुआ इस धरती पे, तो क्या पढ़ते हैं हम? यूहन्ना 4:22 में पढ़ते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह सामरी औरत से कुएं पे बात करते हैं।
4:22
तुम जिसे नहीं जानते उसकी आराधना करते हो, और हम जिसे जानते हैं उसकी आराधना करते हैं, क्योंकि उद्धार यहूदियों में से है।
देखो, तो प्रभु यीशु मसीह के ये शब्द जो सामरी औरत से बात कर रहे हैं कुएं पे, प्रभु यीशु मसीह यहूदियों के बिहाव पे बात कर रहे हैं कि हम यहूदी जानते हैं, हमें ज्ञान है हमारा परमेश्वर कौन है, क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह कौन से वंश से में से थे? यहूदा, यहूदा वंश में से थे। तो हमें यहूदियों को ज्ञान है कि परमेश्वर कौन है, और हम जान के प्रार्थना करते हैं, लेकिन तुम्हें नहीं पता है तुम्हारा परमेश्वर कौन है।
तुम जिसे नहीं जानते उसकी आराधना करते
हो। हाँ, तुम नहीं जानते हो उसको, उसकी आराधना करते हो तुम, ठीक है। अब ये कौन थी सामरी औरत? ये सामरी औरत कौन थी? पढ़ लो मती 4:25।
गलील और दिकापुलिस, यरूशलेम, यहूदिया और यर्दन नदी के पास से भीड़ की भीड़ उसके पीछे हो गई।
नहीं, यूहन्ना 4:25, इसी का ही 25। मैंने मती बोल दिया, ओ सॉरी,
गलील और 4:25 बोले ना।
हाँ जी,
हाँ, गलील और
यूहन्ना 4:25
पढ़ो
अभी। जो
ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि मसीह जो क्रिस्त कहलाता है आने वाला है, जब वह आएगा तो हमें सब बातें बता देगा।
तो ये सामरी औरत बोलती है, हमें पता है कि एक मसीहा आने वाला है, जब वो आएगा, प्रभु यीशु मसीह से ही बोल रही है, जब वो आएगा वो ये सारी बातें हमें सिखाएगा,
बता देगा।
वो इंतजार में थी कि एक मसीहा आने वाला है। क्यों क्यों इंतजार में थी एक मसीहा आने वाला? आपको अगर पता हो, ये जो सामरी औरत थी ना, सामरी औरत 10 और 2, 12 बेटे थे ना उसके, दो का वंश एक साइड हो गया था,
एक तरफ से
यहूदा और बेंजामिन एक साइड और 10 एक तरफ, और ये जो सामरी औरत थी ये 10 वाली थी, और जो शुद्ध यहूदी बोला जाता था वो 2 वाले को बोला जाता था। तो लेकिन इसको कैसे पता था? क्योंकि ये भी याकूब के घराने में से ही थी। पढ़ लो 4:12 पढ़ लो,
इसी में 4:12 में
जी,
क्या तू हमारे पिता याकूब से बड़ा है?
देखो क्या तू हमारे पिता याकूब, तो याकूब का घराना ही तो है इसराइल, लेकिन प्रभु यीशु मसीह इसराइल के घराने को ही बोल रहा है। तुम्हें नहीं पता था किससे? सिर्फ यहूदा वंश को पता है।
एक तरफ तो यीशु मसीह बोल रहे हैं कि इजरायली को के अलावा किसी को प्रार्थना का हुई है,
हाँ वही तो
तरफ इसको मना भी कर रहे।
हाँ, तो यहूदा जो गोत्र से थे उनको माना जाता था यहूदी।
अच्छा।
सामरी एक तरह की गाली थी, प्रभु यीशु मसीह को सामरी बोला है, सामरी पीछे वो जो याचक लोग थे।
अच्छा।
सामरी एक तरह की, जैसे एक छोटी जाति बोल लो,
हाँ
तो एक तरह की गाली मानी जाती थी। आपने वो दृष्टांत भी देखा होगा, एक सामरी रास्ते पे जा रहा था और चोर आए और उसको पीट के, उसका छीन वीन के, उसको जख्मी करके छोड़ गए। फिर एक आया, देखा, छोड़ देख के निकल गया। दूसरा आया, उसने देखा, देख के निकल गया। लेकिन वो जो आया, हाँ तीसरा वाला आया, जो उसने इसका बहुत सुंदर मतलब है,
ये सबसे बड़ी,
हाँ तो वो तस्वीर है किसी चीज की। वो जो पहला आने वाला था वो है व्यवस्था,
हमारे क्लास में भी आया था।
हाँ, तो ये एक अलग चैप्टर है दृष्टांत पे, वो बात अलग है। लेकिन ये सामरी औरत बोल रही है कि हमारा बाप भी याकूब ही है। कैसे ये कैसे संभव हो सकता है? अभी जैसे मैंने बोला ना, 10 जातियां एक तरफ, 2 जातियां एक तरफ, ठीक है। एक यहूदा का नेशन, जिसकी यहूदा का गोत्र, जिसका राजधानी था अपना क्या बोलते हैं यरूशलम, और एक इजराइल देश, ठीक है। तो ये सारी बातें हम जानते हैं, लाजर और उसके दृष्टांत में हमने देखी हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह को जब इन्होंने स्वीकार नहीं किया, और प्रभु यीशु मसीह ने जब ये शब्द बोले मत्ती 23:37 और 38 में, पढ़ो
हे यरूशलेम, हे यरूशलेम, तू भविष्य द्वारा भविष्यग्रस्ताओं को मार डालता है और जो तेरे पास भेजे गए उन पर पथराव करता है। कितनी ही बार मैंने चाहा कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे इकट्ठा करती है, वैसे ही मैं भी तेरे बालकों को इकट्ठा कर लूं, परंतु तुमने न चाहा। देखो तुम्हारा घर तुम्हारे लिए उजाड़ छोड़ा जाता है।
तो ये प्रभु यीशु मसीह के शब्द हैं जब वो मरने जा रहे थे, उससे थोड़ी देर पहले जब उन्होंने स्वीकार नहीं किया यरूशलम। प्रभु यीशु मसीह गधे पे बैठ के आए, हो सना देखो इसराइल का राजा आ रहा है, लेकिन इन्होंने स्वीकार नहीं किया। तब प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला? तुम्हारा घर तुम्हारे लिए क्या छोड़ा जाता है। और 70 ईस्वी में ये देश खत्म हो गया था, 1948 में आके फिर से देश बना है, 14 मई 1948 में। सो तब से प्रभु परमेश्वर के साथ रिश्ता बनाने का, परमेश्वर के साथ संगति करने की शर्त बदल गई। अब ये शर्त क्या है ये पढ़ते हैं यूहन्ना 14:6।
यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। अभी देखो यहाँ पर एक पॉइंट है, हम बोलते हैं ना यीशु मसीह की वसीली से, परमेश्वर खुद बोल रहा है, तो यीशु मसीह के लिए भी हम प्रार्थना में याद कर ही सकते हैं ना।
क्या
आपके जैसे अब आप बोले थे ना कि हमने पिता परमेश्वर को प्रार्थना में यीशु मसीह को नहीं रखना है, लेकिन यीशु मसीह खुद अपने बोले बिना मेरे द्वारा कोई भी पिता के पास
नहीं। इसका मतलब क्या है, मैंने जो आपको बोला उसका मतलब क्या है, उसका मतलब ये है कि प्रार्थना पिता को करनी है, लेकिन जरिए से किसके, जरिए से किसके, मैं ये बोला है। मेरे कहने का मतलब ये है, मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि यीशु का नाम ही नहीं लेना है प्रार्थना में। प्रार्थना जो भी अपनी विनती, जो भी आपका धन्यवाद भी अगर स्वीकार होना है ना, पिता परमेश्वर को जाना है प्रभु यीशु मसीह के जरिए, ठीक है, थ्रू हिम, बाय हिम। तो यहां पे प्रभु यीशु मसीह बता रहे हैं एक ही जरिया है अभी परमेश्वर को अप्रोच करने का, परमेश्वर के पास जाने का। यहूदी ऐसा नहीं करते हैं, अभी तक नहीं करते हैं, प्रभु यीशु मसीह को नहीं मानते हैं वो, लेकिन अब ये शर्त बदल गई है। यहूदी जब तक अब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के जरिए परमेश्वर के पास नहीं जाते हैं, तब तक उनका अभी परमेश्वर के साथ रिश्ता स्थापित नहीं हो सकता, क्योंकि अब शर्त बदल गई है। अब प्रभु यीशु मसीह पिक्चर में है, अब प्रभु यीशु मसीह है बिचौला, उसके बिना कुछ नहीं हो सकता,
उसको मानना पड़ेगा।
हाँ, तो यहूदियों को प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करना होगा और अब इस शर्त को लेके ऐसा करना पड़ेगा। अब हम ऐसा नहीं, यहूदी पता है कैसे प्रार्थना करते थे, हे अब्राहम इसहाक याकूब के परमेश्वर, अज्ञान है, वो अज्ञान है, वो क्यों बोलते हैं ऐसा, क्यों बोलते हैं। अब जो शर्त है वो बदल चुकी है, उस वक्त वो नहीं जानते थे यीशु मसीह कौन है, ठीक है, उस वक्त उनको ये पता था कि अब्राहम इसहाक याकूब नूह के साथ परमेश्वर बातचीत करता है, इसीलिए वो अप्रोच करते थे परमेश्वर को ऐसे, ये अब्राहम इसहाक याकूब के परमेश्वर, हमें ऐसा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अब इस तरीके से वो परमेश्वर के सामने प्रार्थना नहीं कर सकते, ठीक है। अब जो शर्त है वो प्रभु यीशु मसीह के जरिए है, वो ही है रास्ता, और बिना उसके कोई परमेश्वर को अप्रोच नहीं कर सकता, ठीक है। तो लेकिन बहुत सारे क्या, लगभग सब यहूदियों ने उसको रिजेक्ट किया, इस रास्ते को ख़त्म किया, नहीं हम नहीं, तब से एक खड्डा बन गया। लूका 16 का 26 में पढ़ लो, यहूदी और परमेश्वर के बीच में एक खड्डा बन गया। लूका 16 का 26,
इन सब बातों को छोड़ हमारे और तुम्हारे बीच एक भारी खड्डा ठहराया गया है कि जो यहाँ से उस पार तुम्हारे पास जाना चाहे वे ना जा सकें,
तो ये
ना कोई वहाँ से इस पार हमारे पास आ सके।
ये बहुत एक बड़ा खड्डा था कि वो रास्ते का लिंक ही खत्म कर दिया उन्होंने, बोले हम यीशु मसीह को क्यों, हम हमारे पिता थे अब्राहम इसहाक याकूब, उनसे बात है कि हम यीशु मसीह के जरिए क्यों जाएं। आज तक वो अंधकार में है यहूदी, लेकिन जल्दी बदल जाएंगे। और बहुत कम यहूदी एक खास आशीष में एंटर हुए, उसको बोलते हैं क्रिश्चियन आशीष, यानी मसीही आशीष, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह, इन यहूदियों ने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया, उनको एक खास परमेश्वर से आशीष मिली, इसको बोलते हैं क्रिश्चियन ब्लेसिंग, ठीक है। जैसे कि हम जानते ही हैं कि सबसे पहले जो बुलावा था वो किनको था, कलीसिया में यहूदियों में को तो था, बाद में अन्य जातियों को ट्रांसफर हुआ, ठीक है। उसके बाद जब क्या बोलते हैं, जितने यहूदियों को आना था जिन्होंने विश्वास किया, पेंतेकोस्त के वाले दिन पवित्र आत्मा पाए, और उसके बाद भी थोड़े लोग पवित्र आत्मा पाए, वो लोग वो यहूदी बन गए क्रिश्चियन, उनको मिली क्रिश्चियन आशीष। लेकिन उसके बाद जो कॉल थी, बुलावा था, वो ट्रांसफर हो गया अन्य जातियों को, जब ये सुसमाचार युग क्या हो गया, शुरू हो गया, ठीक है। तो आज जो सारे विश्वासी हैं, जो प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के जरिए परमेश्वर को प्रार्थना कर सकते हैं। ये हर एक के लिए नहीं है, सिर्फ वो लोग जो प्रभु यीशु मसीह को प्रार्थना करते, प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, वो परमेश्वर के साथ प्रभु यीशु मसीह के जरिए एक रिश्ता स्थापित कर सकते हैं, यानी बिलीवर्स, विश्वासी।
इसका मतलब जो हम वचन के अनुसार हम लोगों के लिए जो प्रार्थना करते हैं गैर मसीह लोगों के लिए, वो गलत है?
नहीं, मैं आपको बताता हूँ, मैं बताऊंगा क्या करना है, कैसे करने हैं, कैसे वो करना है, वो बताता हूँ अभी जब हम प्रार्थना के स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। ठीक है, मैं सिर्फ अभी आपको सारा ओवरव्यू दे रहा हूँ, डिटेल्स दे रहा हूँ कि क्या क्या हुआ इतिहास में, कैसे परमेश्वर के साथ रिश्ता टूटा, कैसे शर्त बदली, ये सारा स्टेप बाय स्टेप हम चल रहे हैं। ठीक है, लेकिन वो विश्वासी, अभी विश्वासी मैंने बोला, लेकिन वो विश्वासी जो पहली स्टेज पे हैं, आपने देखा है ना,
बुलाए हुए
चुने हुए और वफादार। बुलाए हुए जो स्थिति पे जो ईसाई हैं, जो मसीही जीवन के चाल चलन पे हैं, जो मसीह में बच्चे हैं, जो आत्मिक तौर पे बच्चे हैं, ठीक है, उनके लिए क्या है, पढ़ते हैं पहला पत्रस 2:21। हेलो, हाँ, उसने क्लास चल दी, कही आ जाओ यार।
2:21
माड़ा जा, चल जमागे, ठीक है, चल माड़ा जा, उत्थे चल जमागे प्रार्थना करके, फिर रवि नु भेज देखे, नहीं था, चल ठीक है, मैं बाद गल करता, ठीक है ना।
और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो।
तो जो बुलाए हुए हैं, खाली जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने का फैसला ही नहीं करते, वो बहुत कम है। हम देखते हैं, ठीक है, बुलाए हुए तो बहुत है, लेकिन चुने हुए बहुत कम है। चुने हुए वो है जो क्या है, जो प्रभु यीशु मसीह के कदम है उनका पीछा करते हैं। कदम का पीछा करने का मतलब प्रभु यीशु मसीह के मुताबिक अपने जीवन को ढालते हैं, मसीही चाल चलन में बढ़ते हैं। ठीक है, तो उनके लिए ये बहुत खास अवसर है, ये उनके लिए है ये मेन जो प्रार्थना। ठीक है, सो ये वो पीछा करने वालों के लिए प्रार्थना का सुंदर अवसर है जो प्रभु यीशु मसीह के कदमों पे चलते हैं, यानी चुने हुए। हर एक नॉर्मल विश्वासी की प्रार्थना ना तो परमेश्वर स्वीकार करता है, क्योंकि ज्ञान नहीं है, वो बच्चे हैं, उनको समझ नहीं है क्या। अब ठीक है, प्रार्थना करने तो बैठ गए, लेकिन अगर प्रार्थना करते वक्त आपको पता ही नहीं क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, क्या मांगना है, क्या नहीं मांगना है, तो कैसे होगा फिर वो? आप प्राइम मिनिस्टर हैं, प्राइम मिनिस्टर के सामने कोई स्पीच देनी है या उससे बातचीत करनी है, तो क्या करना पड़ेगा?
पहले प्रैक्टिस करनी पड़ेगी या लिखना पड़ेगा पूरा
तैयारी के, क्या क्या मुझे बोलना है, क्या नहीं बोलना है उसके सामने, सही ना? सोच समझ के लिखोगे पूरी स्क्रिप्ट और उसके बाद बातचीत करोगे ना। इसी तरीके से वो जो सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर है, उसके सामने हमें जब जाना है तो क्या बातचीत करनी है, कैसे बातचीत करनी है, सर झुका के बातचीत करनी है, सर उठा के बातचीत करनी है, उसको ऑर्डर देना है या उससे ऑर्डर लेना है, ये बातें, सारी बातें मैटर करती हैं या नहीं करती हैं। ठीक है, सबोपदेशक 5:2 में देखो, 5:2 में
कर दो
जी,
बातें करने में उतावली ना बनना।
जब बातें करने, जब प्रार्थना करते हो ना, जब परमेश्वर के साथ बातें करते हो, तो उतावली मत करना, सोच समझ के बोलना। हाँ,
ना अपने मन से कोई बात उतावली में परमेश्वर के सामने निकालना।
देखो आगे,
क्योंकि परमेश्वर स्वर्ग में है और तुम पृथ्वी पर है, इसलिए तेरे वचन थोड़े ही हैं।
तेरे वचन
थोड़े ही हैं।
आगे
क्योंकि जैसे कार्य की अधिकता के कारण,
नहीं एक भी पढ़ लो, एक भी पढ़ लो,
एक भी
हाँ।
जब तू परमेश्वर के भवन में आए
हाँ,
तब सावधानी से चलना,
सावधानी से चलना, अपने पैर सावधानी से रखना हाँ।
सुनने के लिए समीप जाना,
सुनने के लिए जाना।
मूर्खों के बलिदान चढ़ाने से उत्तम है क्योंकि वे नहीं जानते कि बुरा करते हैं।
देखो जब हम परमेश्वर के भवन में जाते हैं, जब परमेश्वर को अप्रोच करते हैं, पहली बात तो हमारे पैर सावधानी से रखने हैं। पैरों का मतलब क्या है? अभी ये साधारण बात नहीं हो रही है, ये चिनात्मिक बात है। जब झाड़ी में से मूसा को दर्शन दिए तो क्या बोला? अपने जूते उतार के आना, अपने जूते, क्योंकि तू पवित्र स्थान की तरफ आ रहा है। अभी जूतों का मतलब पता क्या है? जूतों का मतलब अपना चाल चलन और ये जो मनुष्य का तरीका है ना चलने का, ऐसे परमेश्वर को अप्रोच मत करना। और जब प्रार्थना करने आना है तो सुनने आना है। शब्द हमारे बहुत कम होने चाहिए, सोच समझ के होने चाहिए, हम क्या बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, जो हमारे मन में आया बस बोल दिया, ऐसा नहीं है। मन बोला ना, मन में बोलने से उतावली नहीं करना, जल्दी जल्दी कुछ बोल दें, नहीं नहीं नहीं, सोच विचार करके बोलना है क्या मांगे। और ये प्रार्थना का अवसर उनके लिए है जिनकी समझदारी की आंखें खुल गई हैं, जो वाकई समझते हैं कि परमेश्वर कौन है। यहां तो प्रश्न पहला यही है कि लोगों को परमेश्वर का ही नहीं पता है। कौन है पिता परमेश्वर, कौन है उसका इकलौता पुत्र? इकलौते पुत्र को ही बाप की पदवी दी हुई है, दी हुई है या नहीं? ठीक है, इकलौते पुत्र को ही बाप माना जाता है, इकलौते पुत्र को प्रार्थना की जाती है, ऐसा है, ऐसा होना चाहिए। अगर आपको साइडलाइन कर दिया जाए और सिद्धांत को घर का हेड बना दिया जाए और लोग आपको पूछने के बजाय सिद्धांत के पास आए तो कैसा लगेगा? आपके जीते जी ये घर का हेड बनते अच्छा लगता है? ये दुनिया ने किया, ये क्रिश्चियंस ने किया, आप देख रहे हो इस संसार में, ठीक है। तो ये सिर्फ किसके लिए मौका है? पढ़ लो इब्रानिया 4:16, इब्रानिया 4:16 जी।
इसीलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट,
हम
अनुग्रह के सिंहासन के निकट हिया बांधकर चले कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे।
सहायता करे। अब यहाँ पे अंडरलाइन करने वाली बात है, हम किसको बोला गया है? पौलुस हम किसको बोलेगा? पौलुस हम बोल रहा है कलीसिया को। ये हम पता कौन है?
हम माने जो कलीसिया होगा ना, सब कलीसिया जो प्रार्थना करने वाले लोग
हैं
ना।
नहीं 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 नहीं, हम वो है जो प्रभु यीशु मसीह के चेले, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, खाली बुलाए हुए नहीं, चुने हुए, जो ये फैसला करते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना है। तो पौलुस हम उनको बोल रहा है जो जो प्रभु यीशु मसीह के कदमों पे चलने का फैसला करते हैं। प्रभु यीशु, सिंपल शब्दों में पौलुस हम उनको बोल रहा है जो सचमुच क्रिश्चियंस हैं। अब समझते हो सचमुच क्रिश्चियंस कौन है? जो प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं। अभी वो चेले कौन है? अगर कोई मेरे पीछा करना चाहे, अपनी अपने आप का इनकार करे, अपनी सलीब उठाए और मेरे पीछे चले। जो पीछा ही नहीं करते हैं उनके लिए ये अवसर नहीं है।
जो शर्त को मानते हैं वो चेले हैं।
हाँ, तो जो शर्त की शर्त यही है, पीछा करना। अभी बुलाए हुए खाली प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, पीछा नहीं करते हैं, करते हैं पीछा,
सबको भी नहीं मानते ना
बस। तो फिर ये जो अवसर है प्रार्थना का, ये हर एक के लिए ओपन नहीं है, ये सिर्फ उनके लिए है जो प्रभु यीशु मसीह का पीछा करते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं, जो दूसरी स्टेज पे पहुंच गए हैं, चुने हुए, जो चुने हुओं की स्थिति में पहुंच चुके हैं, उनके लिए है ये। अभी आपको मैंने बताया था ना तंबू में, तंबू में एक आंगन था, एक पवित्र स्थान था, एक अति पवित्र स्थान था। अभी आंगन में कौन है? लेवी, लेवी जाति। तो आंगन का मतलब है बुलाए हुए, और उसके बाद अंदर कौन जाता है? उन लेवियों में से जो याचक हैं। पवित्र स्थान में सेवा कौन कर सकता है? सिर्फ याचक। एक नॉर्मल लेवी एंटर नहीं हो सकेगा, अगर हुआ तो
मर जाएगा।
इसी तरीके से बुलाए हुए जो चुने हुओं की स्थिति में नहीं पहुंचते, पवित्र स्थान में नहीं पहुंचते, पवित्र स्थान का मतलब है सत्य। प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला? रास्ता, उसके बाद सच्चाई, उसके बाद जीवन। बुलाए हुए यानी रास्ता, रास्ता पता है प्रभु यीशु मसीह है, विश्वास करते हैं, लेकिन उनमें से चुने हुए तब जब हमें सच्चाई मिलती है, जब हमें सत्य मिलता है, जब हमें शुद्ध वचन मिलता है, तब हम बच जाते हैं चुने हुए वाचा बांधने के बाद। उसके बाद अगर वफादार रहे तो क्या मिलेगा? जीवन। अति पवित्र स्थान में एंटर होंगे, और वो जीवन कौन सा है? अमरता का जीवन, जैसा परमेश्वर में है। ठीक है, तो जब हम जाते हैं प्रार्थना करने में तो क्या मांगना है, सब क्या मिलना है हमें? पढ़िए क्या मिलना है।
इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट लियाम बांधकर चले कि हम पर दया हो।
सबसे पहले हमें दया मिलनी है, हमें क्षमा मिलनी चाहिए हमारे पापों की, हमारे वो पापों की जिनके जरिए से हमने हमारे धार्मिकता के वस्त्र को अशुद्ध किया है, उस पे क्या लेके आए हैं? दाग लेके आए हैं, उनको सफाई करनी है, उनकी माफी मिलनी है, दया मिलनी चाहिए परमेश्वर से। उसके बाद हमें क्या मिलना है?
अनुग्रह पाए,
और उसके बाद हमें मिलना है अनुग्रह
जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे।
हमें ताकत मिलनी है, आत्मिक ताकत मिले प्रार्थना में, ताकि जब हमारे पे परीक्षा आए, जब हमारी कोई टेस्टिंग हो, जब हमारे पे कोई दुख कष्ट आए मसीही चाल चलन में प्रभु यीशु मसीह का पीछा करते हुए, तो हमें आवश्यकता के अनुसार हमें अनुग्रह मिले, हमें तसल्ली मिले, हमें दिलासा मिले। ये मकसद होना चाहिए प्रार्थना का जब हम परमेश्वर के दया के सिंहासन के सामने जाते हैं। और ये प्रार्थना बहुत बहुत जरूरी है उनके लिए जो इस तंग रास्ते पे चलते हैं, जो इस छोटे रास्ते पे चलते हैं। उनको हर रोज, हर घंटे, हर मिनट परमेश्वर के साथ प्रार्थना में लगे रहना है। इसीलिए पौलुस बोलता है प्रार्थना में लगे रहो, प्रार्थना में। इसका उसका कहने का मतलब ये नहीं था कामकार छोड़ो और हमेशा 24 घंटे घर में बैठे रहो, घुटनों पे बैठे रहो और प्रार्थना करते रहो और एक एक शब्द को 100-100 बार बोलते रहो प्रार्थना लंबी करने के लिए। उसका मतलब ये नहीं था, उसका मतलब ये था, जरूरी नहीं है कि आपको कमरे में ही बैठ के, आप आंखें खोल के गाड़ी चलाते हुए, घर पे बैठे हुए, काम करते हुए परमेश्वर के साथ ध्यान लगा सकते हो। परमेश्वर के साथ आपकी बातचीत जारी रहनी चाहिए, परमेश्वर ये स्थिति है, मैं अब क्या करूं, मुझे आपसे बताओ। मन से वो होना चाहिए, जरूरी नहीं शब्दों से ही, मन से होना चाहिए ये एक रिश्ता स्थापित। ठीक है, तो ये उनके लिए अवसर है जो तंग रास्ते पे चलते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह का पीछा करते हैं, प्रभु यीशु मसीह का पीछा करते हैं। आप अगर ध्यान दो, जिस दिन प्रभु यीशु मसीह का पकड़वाया जाना था आपको याद है, 3 बार प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करने गए, प्रेरितों को छोड़ के गए, 9 को बाहर छोड़ के आए, 8 को बाहर छोड़ के आए, 3 को आगे लेके आए, पतरस, याकूब और यूहन्ना। और उनको क्या बोला? उनको लेके गए साथ में, आओ तुम लोग भी मेरे साथ प्रार्थना करो, देखते रहो जागते रहना, देखते रहो जागते रहना। प्रार्थना कौन करने जाता था? प्रभु यीशु मसीह। सही ना? क्यों नहीं प्रभु यीशु मसीह ने बोला उनको? क्योंकि अभी तक पवित्र आत्मा नहीं मिली थी प्रेरितों को। क्यों प्रभु यीशु मसीह अकेले ही प्रार्थना करने जा रहे थे? क्योंकि वो समझते थे कि प्रार्थना का अवसर किसके लिए है, प्रार्थना का अवसर किसके लिए है। पेंतिक्रूस से पहले किसी प्रेरित की प्रार्थना रिकॉर्डेड है बाइबल में? है। इसीलिए प्रार्थना बड़ी खास एक अवसर है, एक बहुत सुंदर चीज है उनके लिए जो प्रभु यीशु मसीह के कदमों के पीछे चलते हैं। खाली चुने हुओं के लिए ये अवसर है, ठीक है। चुने हुए ही इस मौके का सबसे बढ़िया ज्यादा फायदा उठा सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब प्रश्न ये है, बहुत से लोग, बहुत से ईसाई लोग नहीं, ईसाई प्रार्थना के बारे में प्रश्न, वही जो प्रेरितों का प्रश्न है था, हमें प्रार्थना करनी सिखाओ, प्रार्थना नहीं करनी आती है, प्रार्थना करनी सिखाओ। लूका 11 का एक पढ़ लो,
वह किसी जगह प्रार्थना कर रहा था। जब वह प्रार्थना कर चुका तो उसके चेलों में से एक ने उससे कहा, हे प्रभु, जैसे यूहन्ना ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया, वैसे ही हमें भी तू सिखा दे,
प्रार्थना सिखाओ। अब पूछते हैं चेले, चेले क्या पूछते हैं, हमें प्रार्थना करनी सिखाओ, हम कैसे प्रार्थना करें। और प्रभु यीशु मसीह
यूहन्ना ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया।
हाँ, उसने उसने जो भी यहूदी तरीके से चलता था, क्योंकि यूहन्ना को क्रिश्चियन ब्लेसिंग नहीं थी, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का आगमन यूहन्ना के बाद हुआ। आपको पता, अपने अंतिम दिनों में यूहन्ना को डाउट, शक हुई, किसके, प्रभु यीशु मसीह पे। अपने चेलों से को बुला के भेजा उसने, जब जेल में था, जाओ उससे पूछो क्या वही है वो जो परमेश्वर के नाम पे आने वाला था। तो ये वो प्रार्थना जो यहूदियों के अनुसार प्रार्थना अलग, और प्रभु यीशु मसीह के आने के बाद प्रार्थना अलग, ठीक है। तो इस तरीके से बोलते हैं, आप प्रार्थना करो, और प्रभु यीशु मसीह उत्तर में क्या, प्रार्थना बोलते हमें सिखाओ, प्रभु यीशु मसीह उत्तर में क्या बोलते हैं। अब मत्ती 6 अध्याय में जाएंगे हम, मत्ती 6 उसका 9 वचन जी।
अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है,
हे हमारे पिता,
तू जो स्वर्ग में है।
सबसे पहला शब्द क्या था, और तुम इस रीति से प्रार्थना करो, बस इतने लाइन को हम अभी देखना है। प्रभु यीशु मसीह हमें एक रीति, एक मेथड सिखाते हैं, मेथड, एक तरीका। प्रभु यीशु मसीह ने ये नहीं बोला कि यही प्रार्थना बार 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 करते रहो, जैसे ऐ हमारे बाप जो तू आसमान पे है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरे राज्य आए, तेरी मर्जी जिस तरह आसमान पे पूरी होती है, बार 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 बार। एक मैंने आपको पहले भी बोला था, मैथमेटिक्स आपने सबने किया, मैथ स्कूल लेवल पे, उसमें एक फॉर्मूला होता है ए प्लस बी, उसका ब्रैकेट में होल स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है। और जब प्रश्न आता है एग्जाम्स में, अगर हम फॉर्मूला लिख के आ जाएंगे तो नंबर मिलेंगे, मार्क्स मिलेंगे, नहीं ना। वो तो एक मेथड है, तरीका है, ठीक है। सो प्रभु यीशु मसीह ने एक तरीका सिखाया, आप इस तरीके को, इस मॉडल को, इस मेथड को हम 7 हिस्सों में बांट के देखेंगे, सीखेंगे कि प्रार्थना कैसे करनी है, ठीक है। सो पहला जो पहली बात है प्रार्थना की शुरुआत में, इस मॉडल में, इस मेथड में, इस तरीके में, सबसे पहले प्रार्थना जो शुरू करनी है कैसे करनी है, अगला हिस्सा पढ़ो। ऐ हमारे बाप,
तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए।
हाँ, बस इतना ही, ऐ हमारे बाप, तू जो स्वर्ग में है। सो हमारी प्रार्थना जो शुरुआत होनी चाहिए, एड्रेस उस पे होना चाहिए पिता परमेश्वर का। किसका? पिता परमेश्वर का जो स्वर्ग में है। प्रभु यीशु मसीह वहां झूठ बोल रहे थे क्या? अगर प्रभु यीशु मसीह ही पिता परमेश्वर थे, वो धरती पे थे, तो ऐसा बोलते ना, तुम मुझे प्रार्थना करना क्योंकि मैं स्वर्ग में हूंगा। उस वक्त स्वर्ग में कोई था? प्रभु यीशु मसीह जब प्रार्थना करने जाते थे तो कोई स्वर्ग में होता था उसी को प्रार्थना करने जाते थे या अपने आप को ही प्रार्थना करना शुरू कर देते थे? तो हमारी प्रार्थना भी किसको होनी चाहिए? एक लेटर है,
किसी को भेजते तो एड्रेस होता।
अगर एड्रेस गलत है तो सही ना। आपकी पेंशन का चेक अगर आपके घर भेजा और एड्रेस गलत है, आपको नहीं मिला, आप आर्मी में बोलोगे जाके भैया मुझे मिला ही नहीं, मैं कैसे उस वो पैसा ले सकता था? या आपको कोई विनती करे, आपका रिश्तेदार, भैया बहुत आपकी जरूरत है आप जल्दी आ जाओ, आप क्या बोलोगे? मेरे पास लेटर ही नहीं आई तो मैं कैसे आ सकता हूं? सेम तरीका, अगर एड्रेस ही गलत है तो क्या वो विनती, क्या वो प्रार्थना परमेश्वर के पास जा रही है? ठीक है। सो प्रभु यीशु मसीह ने ये सिखाया पहले इस मेथड के पहले स्टेप में कि प्रार्थना किसको जानी है। प्रार्थना जानी है पिता को जो स्वर्ग में है, जिसके बारे में प्रभु यीशु मसीह क्या बोलते हैं अपनी प्रार्थना में। यूहन्ना 17:3 में पढ़ो, यूहन्ना 17:3।
और अनंत जीवन यह है कि वे तुझ एक मात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने।
देखो एकमात्र परमेश्वर कौन है? सिर्फ पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर को जानी है ये प्रार्थना, प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानी है ये प्रार्थना। प्रेरितों को अच्छी तरीके से पता था, पौलुस देख लो पौलुस क्या सिखा रहा है, पहला कुरिन्थियों 8:6 में,
पहला कुरिन्थियों
8:6।
तो भी हमारे लिए तो एक ही परमेश्वर है अर्थात पिता, जिसकी ओर से सब वस्तुएं हैं।
देखो हमारे लिए एक ही परमेश्वर है,
हाँ।
दो परमेश्वर नहीं है, एक परमेश्वर है और वो है पिता, और वो कौन है? पिता। लेकिन आज ईसाइयों में स्थिति ये है, 99.99% ईसाई इस बात का ज्ञान खो चुके हैं, इस बहुत बड़ी सच्चाई का ज्ञान खो चुके हैं, और उनकी प्रार्थना किसको जा रही है? प्रभु यीशु मसीह को जाती है। देख लेना, कहीं भी देख लेना ध्यान से, अब कोई प्रार्थना करेगा ना तो सुनना वो प्रार्थना किसको जा रही है। ठीक है। और वो सोचते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ही है पिता परमेश्वर, वो ही है खुद पिता परमेश्वर। लेकिन ये एक बड़ा सुंदर अवसर है पिता को जानने का, कि जो पिता शब्द यहूदी जानते थे, लेकिन यहूदियों को पुत्र बनने का अधिकार नहीं मिला। पिता समझते ना, है हमारे पिता, पिता का मतलब हम उसके बच्चे हैं, हम उसके बच्चे हैं। और ये अधिकार हर एक के लिए नहीं होता है, आपको हर एक कोई आके पिता नहीं बोलेगा, कौन बोल सकता है सिद्धांत? इसी तरीके से पिता परमेश्वर को प्रार्थना एक वो अवसर है जिसमें हम पिता परमेश्वर को पिता कह के बुला सकते हैं, और पिता कब कह सकते हैं वो अलग बात है। ठीक है। पढ़ लो यूहन्ना 1:12 पढ़ लो।
परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया।
तो हाँ हाँ पढ़ लो।
उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं।
तो देखो अधिकार दिया, अधिकार मिलता है पुत्र बनने का,
संतान होने का।
और जब हम संतान बन जाते हैं तब हम पिता को बोल सकते हैं पिता, ऐ हमारे पिता। और पहला यूहन्ना 3:1 में पढ़ लो, ये बहुत सुंदर मौका जो हमारे पास है।
पहला
3:1।
देखो पिता ने हमसे ऐसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं, और हम हैं भी। इस कारण संसार हमें नहीं जानता क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना।
तो पिता परमेश्वर ने हमें, ये उसका प्रेम है कि हम उसकी सह संतान कहलाए जाएं। ठीक है। ये बहुत सुंदर एक अवसर है कि हम उसके पुत्र बन सकते हैं, और ये सारी प्रार्थना जो जानी चाहिए ये पिता परमेश्वर को जानी चाहिए। किसको जानी चाहिए? यहाँ पे क्लियर, यहाँ पे कोई शक, कोई डाउट? ठीक है, ये सारी प्रार्थना जो भी हमारी प्रार्थना है, सबसे पहले प्रार्थना के शुरुआती शब्द जाने चाहिए पिता परमेश्वर को, ऐ हमारे पिता जो आप स्वर्ग में हो। ठीक है, और उसके ये उदाहरण देख लेते हैं, यूहन्ना 17:1, प्रभु यीशु मसीह कैसे प्रार्थना की शुरुआत कर रहे थे।
यीशु ने ये बातें कही और अपनी आंखें आकाश की ओर उठाकर कहा, हे पिता, वह घड़ी आ पहुंची है, अपने पुत्र की महिमा कर कि पुत्र भी तेरी महिमा करे।
तो हे पिता, वो घड़ी आंखें किधर उठाई? आकाश की ओर। ठीक है, तो ये था प्रभु यीशु मसीह का पहला सबक प्रार्थना के विषय में, कि प्रार्थना किसको जानी है, प्रार्थना पे एड्रेस किसका होना चाहिए, प्रार्थना की शुरुआत किससे होनी चाहिए। ठीक है जी, उसके बाद फिर वापस चलते हैं मत्ती छठे अध्याय में, हाथ रखो उधर क्योंकि इधर बार बार जाना पड़ेगा हमें। दूसरा सबक क्या सिखाते हैं? तेरा नाम पवित्र माना जाए,
तेरा राज जाए।
नहीं, बस बस बस, तेरा नाम पवित्र माना जाए, इतने पे ही हम बात करेंगे। पहले शुरुआत क्या है? ऐ हमारे बाप, उसके बाद तेरा नाम, तू जो आसमान में है, उसके बाद तेरा नाम पवित्र माना जाए। अभी तेरा नाम पवित्र माना जाएगा क्या मतलब है? जब हम पिता परमेश्वर को प्रार्थना में अप्रोच करते हैं, जब उसके सामने जाते हैं, तो सबसे पहले प्रार्थना में हमारे शब्द पता क्या होने चाहिए? उसकी महिमा के लिए, उसकी महिमा होनी चाहिए। सबसे दूसरा जो सबक है, हमारे पिता जो आप आसमान में हो, उसकी महिमा में बहुत कुछ बोलो कि क्या तुमने सृष्टि बनाई, तुमने ये किया, तुमने वो किया, सब उसकी महिमा में जो कुछ बोल सकते हो उसकी महिमा करो। ठीक है, सब दूसरा सबक ये है कि ऐसा ना हो कि हमारे मन में कोई स्वार्थी चीज हो और हम प्रार्थना शुरू की और उसी वक्त बोलना शुरू कर दिया, ये स्वार्थी प्रार्थना हो जाएगी। पहले परमेश्वर को अप्रोच करो, उसके बाद उसकी महिमा करो, उसकी महिमा करो, क्योंकि वो न्यायी है, क्योंकि वो ज्ञान का सोर्स है, क्योंकि वो प्रेम प्रेम करने वाला परमेश्वर है, उसकी शक्ति की महिमा करो। और उसको ऐसे बोलो, जो हमारा पिता जो ऐसी अगमय ज्योति में रहता है, जिसके पास ना तो कोई जा सकता है ना कोई देख सकता है। कुछ उदाहरणें हम देखेंगे बाइबल में परमेश्वर की महिमा की, कि कैसे महिमा करते थे। पढ़ो यशाया 57 का 15।
क्योंकि जो महान और उत्तम और सदैव स्थिर रहता है और जिसका नाम पवित्र है, वह यूं कहता है।
देखो तो परमेश्वर को कैसे महिमा दे रहा है, जो ऊंची ऊंची जगहों में रहता है, जिसका नाम पवित्र है, ऐसे महिमा देनी है। अपोस्टल पॉल, चेला पौलुस कैसे देता था? एफिसियों 1:17। ऐसे ही है, हमें देख के शौक लगता है लोगों को
कि हमारे प्रभु यीशु मसीह की, कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर।
देखो, जो हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर,
जो महिमा का पिता है,
जो किसका पिता है?
महिमा का पिता है।
ऐसे देते थे महिमा, पौलुस ऐसा बोलता था। याकूब देखो कैसा बोलता है, याकूब 1:17, ज्योति का पिता बोलता है उसको।
याकूब
1:17
117 क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जिनमें ना तो कोई परिवर्तन हो सकता है और ना अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है।
ज्योतियों का पिता, ज्योतियों का मतलब पता क्या है, ये सूर्य चंद्र तारे, ये इनको बनाने वाला इनका बाप। सूर्य तो कुछ भी नहीं है, इससे बड़े बड़े भी और तारे हैं जो सूर्य इतना सा है उनके सामने। उनका सबका बाप कौन है? पिता परमेश्वर। ये उसकी महिमा के लिए शब्द हैं जो इस्तेमाल करते थे अलग अलग तरीके से लोग बाइबल में। राजा दाऊद कैसे करता था? भजन संहिता 145 का 2 और 3।
भजन संहिता
145 का 2 और 3।
प्रतिदिन मैं तुझको धन्य कहा करूंगा और तेरे नाम की स्तुति सदा सर्वदा करता रहूंगा। यहोवा महान और अति स्तुति के योग्य है और उसकी बढ़ाई अगम से अगम है।
इसको अगम का मतलब समझते हो?
कोई
पा नहीं सकता,
पा नहीं है
कोई उसको ढूंढ नहीं सकता, ठीक है। उसके बाद नहमिया 9:6 में पढ़ लो। ये चीजें परमेश्वर को अच्छी लगती हैं, अपनी महिमा, जब हम अपने होठों का बलिदान देते हैं उसकी महिमा के लिए। नहमिया 9:6 और आप एक तरह निकाल लो, पहला सैमुएल 2:2 हना जो प्रार्थना करती थी, पढ़ो पढ़ो।
तू ही अकेला यहोवा है, स्वर्ग वरन सबसे ऊंचे स्वर्ग और उसके सब गण और पृथ्वी और जो कुछ उसमें है और समुद्र और जो कुछ उसमें है, सबों को तूने ही बनाया है और सबों की रक्षा तू ही करता है।
देखो तो ये ऐसे परमेश्वर की हम महिमा अपनी प्रार्थना की शुरुआत में कर सकते, कुछ उदाहरणों को लेके, कुछ शब्द बदल बदल के उसकी महिमा के लिए। पहला सैमुएल 2:2 में देख लो हना की प्रार्थना।
2:2
हाँ जी।
यहोवा के तुल कोई पवित्र नहीं, क्योंकि तुझको छोड़ कोई और है ही नहीं और हमारे परमेश्वर के समान कोई चट्टान नहीं है।
तो ये महिमा है, ये लिस्ट जितनी लंबी करती जाए कम है, बहुत ही उदाहरणें हैं, ठीक है। तो ये कुछ उदाहरणें हैं जो दूसरे सबक में हमें मिलती हैं, कि दूसरे सबक में सबसे पहले हमें परमेश्वर की महिमा करनी है। परमेश्वर के सामने जाने के बाद क्या करनी है? परमेश्वर की महिमा। जरा सोच लो, आप मन में सोच लो कि आप परमेश्वर के सामने चले गए हो और अब आप उसके सामने बोल रहे हो, सबसे पहले आप क्या बोलोगे? अमिताभ बच्चन के सामने जाओ, सर क्या आप क्या एक्टिंग करते हो, क्या मूवीज आपने बनाई, बढ़िया बढ़िया, प्रशंसा करोगे ना। बातचीत कैसे शुरू होगी? प्रशंसा से शुरू होगी। सर मैंने वो आपकी मूवी देखी, क्या बढ़िया आपने एक्टिंग की, ऐसा करोगे ना। जरा सोचो, परमेश्वर के सामने जाके हम सीधे कैजुअली, कई बार हमें पता ही नहीं क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है,
परमेश्वर की महिमा,
ठीक है। तो दूसरा सबक ये है कि परमेश्वर की क्या करनी है? महिमा। अलग अलग तरीके से करो, अलग अलग शब्द। अरे आप तो प्रेम के पिता हो, ज्ञान के पिता हो, आकाश पृथ्वी आप बनाने वाले, उसको चलाने वाले आपको, आपकी मर्जी इस धरती पर पूरी होने वाली है, ये सारी बातें ऐसे बोलो, महिमा दो।
सारी रीति से भी देखो, अगर जब तक हम किसी की महिमा सुनने तब तो वो प्रसन्न नहीं होता वो इंसान। इसलिए अगर वो भी तो परमेश्वर है जिसने तो सब कुछ ही बनाया,
ठीक है। तो ये है दूसरा सबक। तीसरा सबक प्रभु यीशु मसीह ने क्या सिखाया, उसी में चलते हैं। मत्ती 6 का
राज्य आए
और तेरी मर्जी जिस तरह आसमान पे पूरी होती है जमीन पर भी हो। तो इसका मतलब अगला जो सबक हमारी प्रार्थना में, अगला जो विषय होना चाहिए वो होना चाहिए परमेश्वर के राज्य के लिए प्रार्थना। क्योंकि आपको समझ आ गई है कि परमेश्वर ने एक युगों की योजना बनाई है और युगों की योजना के अनुसार एक राज्य आएगा जिसमें धार्मिकता बसेगी, एक राज्य होगा 1000 साल का जिसमें प्रभु यीशु मसीह राजा होंगे और उसके साथ कलीसिया मिलके सारी मनुष्य जाति का भला करेगी। वो आएगा, आप नहीं भी प्रार्थना करोगे वो आएगा। लेकिन इससे पता चलता है आपके मन की स्थिति परमेश्वर को, कि हाँ ये हाँ मेरे राज्य का इंतजार कर रहे हैं, ये मेरे राज्य पे विश्वास करते हैं। तो तीसरा सबक ये है, हमारे मन में, हमारे दिल में, हमारे शब्दों में वो योजना जो परमेश्वर ने मनुष्य जाति के लिए बनाई है, ये सुसमाचार का प्रचार जो चल रहा है वो जल्दी जल्दी लोगों को समझ आ जाए, पता चले, पहुंचे, ठीक है। और उसके लिए प्रार्थना, परमेश्वर आपके राज्य में इतनी अच्छी अच्छी चीजें होने वाली हैं, पाप खत्म होने वाला है, शैतान नहीं होगा, और सब एक दूसरे से प्रेम करेंगे, सब दुनिया में बीमारी खत्म हो जाएगी, मृत्यु खत्म हो जाएगी, क्या राज्य है आपका, आपका राज्य जल्दी जल्दी आए आपकी इच्छा के मुताबिक। ये है तीसरा सबक। कुलूसिया 1:13 पढ़ लो ये बात, कुलूसिया 1:13 कि जो कलीसिया है, प्रभु यीशु मसीह की जो कलीसिया है, जो शरीर में है, हाँ
उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया।
प्रिय पुत्र का राज्य और उस राज्य के सहभागी उत्तराधिकारी हम भी हैं। प्रभु यीशु मसीह के साथ हम राज्य करेंगे, हमने चर्च की क्लास में पढ़ा ना, वो 144,000 जो प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया होगी वो क्या करेगी, प्रभु यीशु मसीह के साथ क्या करेगी, राज्य करेगी। और जब राज्य करेगी तब जाके पूरी होगी ये प्रार्थना, तेरी मर्जी जिस तरह आसमान पे पूरी होती है, जब सब लोग पाप को नफरत और धार्मिकता को प्यार करेंगे तब जाके ये प्रार्थना पूरी होगी। लेकिन हमें प्रार्थना में ये बात याद रखनी है, परमेश्वर तेरा राज्य धर्मी राज्य है, बहुत अच्छा राज्य है, हम प्रार्थना करते हैं वो जल्दी से जल्दी इस धरती पे प्रकट हो, लेकिन इसमें भी हमारी नहीं आपकी इच्छा पूरी हो। तो ये है तीसरा सबक, समझ आ गया?
Yes.
ये ऐसे बनता है मॉडल, ये होता है मॉडल। मॉडल का मतलब ये नहीं है कि वही प्रार्थना रिपीट करते जाओ बार बार, जो बिना सोचे और समझे। अभी मैं आपको उदाहरण देता हूं बिना सोचे समझे की प्रार्थना, तो ये करते हैं तेरा राज्य आए, तेरी मर्जी जिस तरह आसमान पे पूरी होती है जमीन पे भी, लेकिन बिना सोचे। पता क्या, कैसे बिना सोचे बोल रहा हूं मैं, उसका कारण ईसाइयों के मुताबिक हमने देखा था ना, वो गड़े वाले क्या बोल रहे हैं,
वो बाहर चला गया,
किसी को कोई दूसरा मौका नहीं है, बस पहली मृत्यु और उसके बाद सीधा नरक, कोई मौका नहीं मिलने वाला है। तो जब अगर अगर आग गिरने वाली है ऊपर से, जब सब कुछ नाश हो जाने वाला है, ये अधर्मी लोग खत्म कर दिए जाएंगे, ईसाई लोग स्वर्ग में पहुंच जाएंगे, परमेश्वर की इच्छा कहां पूरी होगी? फिर क्यों हम बोल रहे हैं तेरी मर्जी जिस तरह आसमान पे पूरी होती है जमीन पे भी हो? क्या वो पूरी हो चुकी है?
नहीं।
हो रही है?
नहीं।
आने वाले समय में ही होगी ना। अब धरती पे अगर कोई रहेगा ही नहीं तो कहां होगी फिर वो इच्छा पूरी? क्या ये जानवर पूरी करेंगे इच्छा?
लेकिन बचन में तो पास जी क्या लिखा हुआ, आप देखो पहला संसार जल प्रलय से नष्ट हुआ,
हाँ।
और दूसरा बोला पूरा आग में सड़ाया जाएगा, ये भी परमेश्वर का वचन है।
तो आप इसका मतलब भूल गए फिर, आग का क्या मतलब है?
आग तो संसार है ना?
नहीं,
आग को संसार भी तो बोला
नहीं,
आग भी संसार है एक जगह पर।
नहीं, आप ध्यान से ये चौथी और पांचवी क्लास फिर से सुनना अभी।
अच्छा चलो सुनो,
ठीक है। आग का मतलब ये आग नहीं है जो ये जलाने वाली आग, पर नहीं ब्रदर, आग का मतलब है परमेश्वर का धर्मी न्याय जो किन पे आना है। धरती, धरती का मतलब क्या है? धरती ये, धरती ये पृथ्वी नहीं, धरती का मतलब क्या था भूल गए आप? धरती का मतलब है चार संगठन,
व्यापारिक संगठन, सामाजिक संगठन, धार्मिक,
इन चारों को नाश करेंगे परमेश्वर, इस धरती को नाश
करेंगे, व्यवस्था को खत्म करेंगे जो लोगों ने बना रखी है, वही चारों।
इस धरती के लिए योजना पता क्या है? एक पीढ़ी आती है, दूसरी जाती है, ये धरती सदा की सदा अटल है, ये टलने वाली नहीं है। और इस धरती की नींव परमेश्वर ने रखी है बसने के लिए, ना कि उजाड़ने के लिए। ये वचन नहीं पढ़ाया आपको?
प्रभु ने भी बोला हुआ है कि मैं दोबारा से इसको नष्ट नहीं करूंगा, एक बार करके पछताया था परमेश्वर ने।
ये वचन नहीं पढ़ाए हुए आपको मैंने?
पढ़ाए।
चौथे, चौथी और पांचवी क्लास आप फिर से सुनो ध्यान से, अब रिविजन करो, क्योंकि अब आप सॉलिड फूड ले रहे हो, रोटी ले रहे हो, तो वो समझ होनी चाहिए, ठीक है। तो इसलिए हम जो अगर कलीसिया के मेंबर बनते हैं तो हम प्रभु यीशु मसीह के साथ राज्य करेंगे 1000 साल, और उस वक्त हम करेंगे सुधार दुनिया का। जब दुनिया का सुधार होगा तब होगी परमेश्वर की इच्छा, जैसे आसमान में पूरी वैसे ही धरती पे भी पूरी हो। ठीक है, तो तब जाके ये प्रार्थना पूरी होगी। लेकिन हमारा फर्ज बनता है कि हम तीसरी बात करें हमारी प्रार्थना में, वो होगी परमेश्वर की महिमा के लिए, सॉरी परमेश्वर के राज्य के लिए। ठीक है, उसके बाद जो चौथा सबक है बहुत से लोग ये गलती करते हैं चौथे सबक में, काम के लिए प्रार्थना करते हैं, रोटी के लिए प्रार्थना करते हैं, शारीरिक रोटी के लिए क्या बोलते हैं प्रभु यीशु मसीह, पढ़ लो मत्ती 6:8 में, पढ़ लो 6:8 में,
इसीलिए तुम उनके समान ना बनो क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकताएं हैं।
और 6:31-32 भी पढ़ लो,
इसलिए तुम चिंता करके यह ना कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जातियां इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, परंतु तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है।
परमेश्वर को पता है ना, कौआ चिड़िया जानवर इनके कोई स्टोर है, देता है परमेश्वर, तो ये चीजों के लिए रोटी कपड़ा और मकान की चिंता करने की जरूरत नहीं, और ना ही अपना समय वेस्ट करो प्रार्थना में इन चीजों के बात करने में। हमारे रोज की रोटी हमें दे, इसका मतलब क्या है, ये है आत्मिक रोटी, यानी हमारा आज का वचन हमें दे जिससे हमें ताकत मिले, जिससे हमें आत्मिक ताकत मिले, शारीरिक ताकत नहीं, आत्मिक ताकत मिले। और एक वायदा पढ़ लो प्रभु परमेश्वर का ही, इब्रानियों 13:5, हमारा परमेश्वर ना तो कभी हमें छोड़ता है ना हमें त्यागता है।
इब्रानियों 13:5
तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उस पर संतोष करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी त्यागूंगा।
स्वभाव में लालच नहीं होना चाहिए। इसराइलियों को जब मन्ना देता था उनको बोलता था कल के लिए मत
रख लो, लेकिन करते थे ना, परमेश्वर पे दंडित करता था।
तो यही है, ये वायदे खाली पढ़ने के लिए नहीं है, सोच समझ पे ध्यान करने वाले भी हैं। यशाया 33:16 भी पढ़ लो, यशाया 33:16
जी, ये वह चट्टानों के गढ़ों में शरण लिए हुए रहेगा, उसकी उसको रोटी मिलेगी और पानी की गति कभी ना होगी।
देखो रोटी पानी सब मिलेगा, देखो ये परमेश्वर का वायदा है, ये वो परमेश्वर है जिसने इज़राइल को कानून दिया कि अगर आप किसी काम करने वाले को अपने घर पे काम करने के लिए लेके आए, सूरज छिपने से पहले उसकी मजदूरी उसके हाथ में होनी चाहिए, ये कानून था इज़राइल के लिए परमेश्वर ने रखा। तो जरा देखो कानून बनाने वाला खुद ही कानून तोड़ेगा, हमारे पास तो जैसे थोड़ी है कि बोलेंगे खुद दुनिया को कुछ बोलेंगे लेकिन खुद कुछ करेंगे, ऐसे नहीं है। ठीक है, सो ये परमेश्वर के बड़े सुंदर वायदे हैं, और हमें प्रार्थना करनी है आत्मिक भोजन के लिए, आत्मिक भोजन के लिए। चर्च कलीसिया को हर रोज परमेश्वर के वचन के लिए प्रार्थना करनी है, परमेश्वर के वचन से गाइडेंस लेनी है, परमेश्वर के वचन से आत्मिक बढ़ोतरी के लिए, हमारे आत्मिक जीवन के लिए वचन चाहिए। जरा सोचो हम शारीरिक भोजन दिन में कितनी बार खाते हैं,
तीन बार
और उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा, कुछ ना कुछ चलता रहता है, चाय आ गई, ये आ गया, वो आ गया, चलता रहता है ना। अगर अगर हम परमेश्वर का आत्मिक भोजन या शारीरिक भोजन अगर हम हफ्ते के हफ्ते लें तो कैसा रहेगा? एतवार संडे के संडे हम लें, कैसे चर्च में ऐसे गिरते गिरते पहुंचेंगे? और जब भोजन मिलेगा तब आ रहा है। तो अगर आत्मिक भोजन नहीं मिलेगा तो क्या स्थिति होगी आत्मिक बढ़ोतरी की? और
शारीरिक भोजन में इतनी ताकत, आत्मिक भोजन में कितनी ताकत
होगी?
तो प्रभु यीशु मसीह ने इनफैक्ट शारीरिक भोजन को कम बोला है और आत्मिक भोजन को ज्यादा बोला। क्या आदमी खाली रोटी से ही जीवित नहीं रहता बल्कि हर एक वचन जो परमेश्वर की, ठीक है? सो ये हमें प्रार्थना करनी चाहिए। लूका 11 का 11 और से लेकर 13 तक भी पढ़ लो। 11 से लेकर 13 तक प्रभु यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं?
तुम में से ऐसा कौन पिता होगा कि जब उसका पुत्र रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो मछली के बदले उसे सांप दे, या अंडा मांगे तो उसे बिच्छू दे? और जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों की को अच्छी वस्तुएं देना चाहते हो तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा?
देखो तो ये पिता परमेश्वर है, ठीक है? और यहाँ पे एक मैं आपको बात नोट करने वाली बात बताने जा रहा हूँ, जो भी आपने नोट नहीं की है। ऐ हमारे बाप, हमारे रोज की रोटी हमें दे। हम, हमारे, हम इसका मतलब एक से ज्यादा। इसका इसमें नोट करने वाली ये बात है कि ये प्रार्थना जो प्रभु यीशु मसीह सिखा रहे हैं, इस प्रार्थना में सलाह ये है कि ये प्रार्थना होनी चाहिए पूरी कलीसिया के वेलफेयर के लिए। कलीसिया मतलब प्रभु यीशु मसीह के शरीर के अंग, यानी जो जो चुने हुए हैं उनके वेलफेयर के लिए ये प्रार्थना होनी चाहिए। और जब आप जाते हो ना, आप अकेले नहीं हो, आपके साथ कोई और भी है। वो कौन है? प्रभु यीशु मसीह। तो आप हम हैं, आप अकेले नहीं हो,
सबको आत्मिक।
हाँ, तो हाँ, तो सबसे पहले जो प्रार्थना होनी चाहिए वो हमारे शरीर के जो बाकी अंग है, हमारे शरीर नहीं, प्रभु यीशु मसीह के शरीर के जो बाकी अंग हैं उनके साथ एक आत्मा में जाके प्रार्थना करनी है, कलीसिया के वेलफेयर के लिए प्रार्थना करनी है। इसीलिए हम लिखा है, कहीं पर भी मैं नहीं लिखा है। मैं आता हूँ तेरे सिंहासन के पास, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, ये प्रभु यीशु मसीह ने नहीं सिखाया। किसने सिखाया? क्या सिखाया? हम, हम। नोट करने वाली बात है ये, ठीक है? खाली हमारा स्वार्थीपन ना देखे बल्कि पूरी कलीसिया का उसमें वेलफेयर हो, पूरी कलीसिया का भला हो उसमें, ठीक है? उसके बाद अगला जो सबक, पांचवा सबक, चार सबक हो गए, पांचवा सबक 6:12 में पढ़ लो।
और जिस प्रकार हमने अपना अपराधियों को क्षमा किया वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर।
तो अपराध, अभी अपराध का मतलब पाप। हम जब परमेश्वर के सामने जाते हैं, हम अपराध तो स्वीकार करते हैं, परमेश्वर हम पापी हैं, गुनहगार हैं, हमने पाप किया है, ठीक है, हम माफी मांगते हैं। लेकिन माफी मिलती है एक शर्त पे, और सबसे पहले माफी मांगने का जो मतलब यहाँ पे मतलब पता क्या है? अगर आपको याद है, हम बहुत से पाप करते हैं दिन में, अगर आपको याद है कोई खास पाप जो आपको लग रहा है कि मैंने बहुत गलत कर दिया, परमेश्वर को बोलना है प्रार्थना में, परमेश्वर ये आज मैंने बड़ा बड़ा पाप किया, मुझे नहीं करना चाहिए था, इसके लिए मुझे क्षमा करो। जितने भी लिस्ट कर लो, जैसे जो याद है, जो नहीं याद है उनके लिए बोलो, जो पाप मैंने अनजाने में किए उसके लिए भी हमें क्षमा कर दो।
लेकिन आजकल तो प्रचार क्या होता है कि बोलते हैं कि परमेश्वर ने तुम्हारे लिए एक बार अपने प्राणों का बलिदान दे दिया, तुम्हारे पाप से बार बार पाप याद नहीं करता।
तो फिर मैं एक वचन पढ़ाता हूँ, वो भी एक योहन्ना, एक योहन्ना,
याद नहीं करना बोला बार बार।
एक मिनट, एक योहन्ना, इसका मतलब आप वो पाप बार बार नहीं कर रहे हो?
नहीं, मैं एक बार
वही बोल रहा हूँ, जो जो ऐसा बोलते हैं इसका मतलब वो पाप हम कर नहीं रहे हैं या हम किसको पहला योहन्ना 1:9-10 पढ़ लो।
1:9-10 यदि हम अपने पापों को मान ले,
देखो मानना बहुत जरूरी है, हर रोज हम बहुत से पाप करते हैं और यदि हम मानते हैं
तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है,
कर देता है। लेकिन आगे
यदि हम कहें कि हमने पाप नहीं किया तो उसे झूठा ठहराते हैं और उसका वचन हम में नहीं है। मतलब खुदा का डर हम में नहीं है, वचन का मतलब डर नहीं है,
ठीक है। तो हम झूठा ठहराते हैं किसको?
परमेश्वर को,
ठीक है। हम रोज पाप करते हैं, कई पाप ऐसे हैं जो बार बार करते हैं, वो बोलने हैं परमेश्वर को।
झूठ बोलना भी
ये परमेश्वर मैं बार बार कर रहा हूं, इसके लिए मुझे शक्ति दे ताकि मैं ये चीज बार बार नहीं करूं। अगर जब आप बोल रहे हो नहीं प्रभु यीशु मसीह ने बलिदान दे दिया बस अब फ्री हो जो मर्जी करो,
प्रचार होता है चर्च में, प्रचार सुनता हूँ।
नहीं हम, मुझे नहीं मालूम ब्रदर कैसे प्रचार करते हैं, क्यों प्रचार करते हैं ऐसा, और ज्ञान है या नहीं है, वो भगवान इसका न्याय करे, ठीक है। उसके बाद अगर पापों की क्षमा मिलनी है उसकी एक शर्त है, शर्त क्या है वो पढ़ लो, मत्ती 6:14-15।
इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा ना करेगा।
तो ये क्षमा करने की शर्त है, ऐ हमारे पिता हमारे पाप, हम पिता से तो पाप माफ करवा रहे हैं, लेकिन अगर हम प्रार्थना में ये नहीं बोला जैसे मैं अपने गुनाहगारों को माफ करता हूँ वैसे तुम भी मेरे पापों को क्या करो, अगर यही बात नहीं हो रही है तो हमें माफी मिलेगी? अगर मैं किसी मनुष्य ने जिसने मेरे खिलाफ कुछ गलत किया उसको माफ नहीं कर रहा हूं तो क्या मैं क्षमा का हकदार हूं? नहीं मिलेगी क्षमा, नहीं मिलेगी माफी, परमेश्वर नहीं देंगे माफी। पहले हमें माफ करना है उसके बाद फिर परमेश्वर हमें हमारे पाप क्या कर देंगे, माफ कर देंगे। देखो कितना सुंदर सिद्धांत बनाया है परमेश्वर ने, बढ़िया प्रिंसिपल है ना, इसमें कोई वो तो नहीं लग रही ना। तो ये तो इधर भी प्रभु यीशु मसीह ने भी बोला है, सबने बोला जैसा व्यवहार हम चाहते हैं कि लोग हमारे साथ करें, ठीक है। तो जरा प्रार्थना करने से पहले जरा सोच लो आंखें बंद करके, क्या मैंने मेरे सारे गुनाहगारों को माफ कर दिया है आज जिन्होंने मेरे कहना, अगर नहीं किया तो पहले करो और उसके बाद परमेश्वर से माफी मांगो, ठीक है। जरा सोचो आजकल टेंशन किसकी वजह से आता है, ब्लड प्रेशर हाई हो गया और हार्ट अटैक आ गया और ये स्ट्रोक्स अधरंग का अटैक आ गया, ये सब कैसे होता है? ये ज्यादा प्रेशर स्ट्रेस की वजह से, ना माफ करने की वजह से हम भर लेते हैं अपने आप को गुस्से में क्रोध में, फिर क्या होता है, ऐसी चीजें होती हैं। जरा सोचो 2 मिनट के लिए माफ किया, ठीक है बात खत्म। लेकिन लोग इतना, आपने देखा होगा आप तो गाड़ियां चलाते हो कहीं गाड़ी की एक थोड़ी सी टच हो गई गाड़ी रोकेगा ब्रेक मारेगा दरवाजा जोर से दार करके धक।
अभी मैं श्रीनगर जा रहा था, मैं सवारी को ले आया, वो खड़ी गाड़ी में सिस्टर ने लाके ठोक दी, तो जब मैं उतर के गया ना वो सिस्टर इतना जोर से कपड़े लगे, काफी भीड़ हो गई थी वहां पर, तो वो मेरे को बोलती है सॉरी भैया मेरे से है ना ब्रेक की जगह एक्सीलेटर दब गया। तो मैंने कहा कोई बात नहीं देना ये गाड़ी, मेरे का दुख मैंने कहा इस बात का, तुझे चलाना नहीं आता तो सीख पहले, मैंने उसको बोला सबके सामने, मान ली ये गाड़ी सामने थी तू गाड़ी से बचाव हो गया, तेरी गाड़ी का भी नुकसान हो गया मेरे का भी हुआ, किसी को मार देगी तू, मैंने कहा। वो लोग हैरान हुए देखकर, मैंने कहा जा मैं तू अपना ही कुछ घबराने की जरूरत नहीं है, मुझसे भी हो सकती थी ये गलती, मैं तो छोड़ दिया माफ कर दिया, मैंने कहा और कोई होता तो तेरे को बोलता पैसे ले ले, लेकिन मैं इससे बड़ा नहीं हो जाऊंगा, मेरे को परमेश्वर देगा, हम परमेश्वर के लिए जा, मैंने तुझे माफ कर दी, ठीक चलाना लग गए।
तो वही वही बात यही है, अगर आपसे भी गलती हो जाए,
हम
हो जाती, सिर्फ उतर के सिंपल माफी मांग लो यार, गलती हो गई प्लीज, अब बता दो क्या करना है, मैं वो करने के लिए तैयार,
बस सॉरी।
इससे सारा वो हो जाएगा, लेकिन आजकल तो लोग नहीं, तेरी गलती नहीं, मेरी गलती, तूने क्यों ब्रेक मारी सामने से, वही उल्टा टेंशन का एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है। तो ये परमेश्वर का बहुत सुंदर सिद्धांत है, गोल्डन सिद्धांत, कि दयावान होना है सारे अपने मनुष्य जाति के प्रति, ठीक है। तो ये है पांचवा सबक। छठा सबक क्या है, 6:13 में पढ़ लो,
और हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा।
अभी बस बस हमें परीक्षा में ना ला और हमें बुराई से बचा। तो ये दो विचार हैं इस वचन में, अब एक एक करके देखेंगे। पहले हमें परीक्षा में ना ला, इसका मतलब क्या है, क्या हमें ये प्रार्थना करनी चाहिए परमेश्वर को कि परमेश्वर हम पे कोई परीक्षा ना लेके आए, ठीक है। तो ये परीक्षा का मतलब क्या है, ठीक है, पहले पढ़ते हैं, जो तंग रास्ते पे चलते हैं उन पे कैसी कैसी परीक्षाएं आती हैं, याकूब 1:2-12, याकूब 1:2-12।
हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो।
देखो ये याकूब बोल रहा है, जब आप पे परीक्षा आए तो पूरे आनंद की बात समझो। तो क्या हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें परीक्षा में न डाल। और 12वां वचन भी पढ़ो,
धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है।
देखो धन्य है वो जो परीक्षा में पढ़ता है,
परीक्षा में स्थिर रहता है।
हाँ, और पहला पत्रस 4:12 में पढ़ लो,
जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भरती है, इससे ये समझकर अचंभा ना करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है।
भयानक कष्ट आ गया, परीक्षा आ गई, इससे हैरान मत होना कि अरे मेरे साथ ये क्या हो रहा है ये वो ये कोई हैरानी की बात नहीं है। 1:6 भी पढ़ लो, पहला पत्रस 1:6।
तत्कारण तुम मगन होते हो, यद्यपि अवश्य है कि अभी कुछ दिन के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख में हो।
देखो नाना प्रकार की अलग अलग तरह की परीक्षाएं आती हैं। अभी ये परीक्षा जिसके बारे में, जिसमें हमें नहीं पढ़ना है, वो परीक्षा कौन सी है और उसके लिए क्या प्रार्थना करनी है। अभी ये परीक्षा दो तरह की होती है, टेम्पटेशन दो तरह की होती है, ठीक है। एक परीक्षा जिसके बारे में याकूब 1:13 में पढ़ लो,
1:13
जी, इस परीक्षा में हमें नहीं पढ़ना है।
जब किसी की परीक्षा हो तो वह यह ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है,
क्योंकि परमेश्वर कभी बुराई से परीक्षा
नहीं करता,
ठीक है,
क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है।
तो परमेश्वर बुरा जब अगर आपके साथ हो रहा है और आप बोले अरे मेरे पे परीक्षा परमेश्वर की ओर से, ऐसा नहीं बोल रहा है। ये परीक्षा का मतलब ये है कि हमारे शारीरिक इच्छाओं के कारण या पाप के कारण या गलत हमारे कामों के कारण जब हम कष्ट में पड़ जाते हैं, उदाहरण के तौर पे मैं उदाहरण लेता हूं, मेरी किसी से लड़ाई हो गई, मैंने उसको मार दिया, पीट दिया, उसका मुंह फोड़ डाला, कुछ कर दिया, पुलिस का केस बन गया, हमारी खिंचातानी हो रही है, और जब हम आके शाम को आके बोले अरे परमेश्वर की ओर से हमारी परीक्षा, तो ये बात तो गलत है ना। तो आपकी शारीरिक पाप की वजह से, शारीरिक कमजोरी की वजह से, जो आपको नहीं करना चाहिए था आपने वो कर दिया, अभी वो आप पे परीक्षा आ पड़ी है, वो परीक्षा परमेश्वर की ओर से परीक्षा नहीं है और ना ही हमें बोलना है वो। तो और ऐसी परीक्षा से हमें बचना है, इसके लिए प्रार्थना करनी है कि मेरे शरीर में जो कमजोरियां हैं उनकी वजह से मैं किसी परीक्षा में ना फंस जाऊं, शैतान के जाल में ना फंस जाऊं, उससे हाँ अपनी अपनी कमजोरी की वजह से। एक परीक्षा परमेश्वर भेजते हैं
जैसे अय्यूब की
हुई थी, हाँ, और लेकिन वो होती है हमारी आत्मिक बढ़ोतरी के लिए, उससे हमें आत्मिक जीवन में फायदा मिलता है।
बाइबल में परीक्षा दो प्रकार की, शारीरिक और आत्मिक।
यस 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 परमेश्वर की, परमेश्वर की ओर से परीक्षा पता क्या होगी? आपके विश्वास की परख,
जैसे अब्राहम की किसी
जैसे या हाँ आपका विश्वास साबित करने की परख। और जो आपने स्वभाव मसीही स्वभाव आपने मान लो आपने बहुत सबर आ गया है, तो उसके लिए फिर आपको आपकी परीक्षा ले जाएगी कि आप कितना सबर में आ गए हो। अगर मैं बोलूं मेरे में बहुत पेशेंस आ गया है, बोलने से बात तो नहीं बनती ना, टेस्ट तो देना पड़ेगा ना, तो फिर परमेश्वर टेस्ट करते हैं कि क्या वाकई ये विश्वास सबर में बढ़ गया है या नहीं। फिर आपको स्थिति में लेके जाएगा परमेश्वर जहां आपको सबर दिखाना है रखना है, तो वो होती है परमेश्वर। ऐसी परीक्षाओं के बारे में प्रार्थना नहीं करने के परमेश्वर हमें ऐसी में ना डाल,
हमारी कमजोरियां शारीरिक हाँ,
उनके लिए ऐसी परीक्षाओं के लिए प्रार्थना करनी है कि मेरी शारीरिक कमजोरियां जो हैं वो उनकी वजह से कहीं मैं कहीं गलत चीज में ना फंस जाऊं। ठीक है, तो ये है। और दूसरी बात ये है कि जो ऐसे क्या बोलते हैं ऐसी परीक्षाएं जब आती हैं जो परमेश्वर की तरफ से होती हैं हमारा विश्वास परखने के लिए, वो हमें एक बहुत बड़ा आत्मिक पाठ सिखा जाती हैं हमारे जीवन में। हम विश्वास में और बढ़ जाते हैं, हम हमारा भरोसा परमेश्वर पे और बढ़ जाता है। ठीक है, और दूसरी बात ये है वचन क्या था 6:13 हमें
परीक्षा में न पड़ परंतु बुराई से बचा।
बुराई से बचा, बुराई से बचा भी का मतलब नहीं है हमें अबैंडन अस नॉट इन टेम्पटेशन, मतलब हमें परीक्षा में अकेला ना छोड़, हमारे साथ रह। जब हमारी परीक्षा हो ना, हमें परीक्षा में ना डाल नहीं बोलना है, हमें ये बोलना है हमें परीक्षा में अकेला ना छोड़, क्योंकि परमेश्वर का वायदा है ना, ना मैं तुम्हें छोड़ूंगा और ना त्यागूंगा। ठीक है, लेकिन एक समय आया था जब प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को छोड़ दिया कि तब तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। तो हमें प्रार्थना करनी है कि परमेश्वर हमारी परीक्षा में हमारे साथ रहे, हमें मत छोड़, हमारे अंग संग रहे। ठीक है, तो ये। और दूसरी बात हमें ये बोलनी है कि हमें बुराई से बचा। बुराई से बचा का क्या मतलब है? बुराई से बचा का मतलब ये है कि हमारे अंदर जो शारीरिक कमजोरियां, हमारे अंदर जो बुरा इंसान है उस पे जय प्राप्त करने की हमें शक्ति दे, ताकि मैं अपने आप से अच्छी लड़ाई लड़ सकूं। ये जो मेरे अंदर का इंसान है, जो बुरा इंसान है, जो बुरी शक्ति है, वो उभर के सामने ना आए, उसको मैं दबाए रखूं। मत्ती 26:41 पढ़ लो।
जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है।
तो शरीर बहुत कमजोर है, और जागते रहो, ध्यान करो, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हमें हर एक को अपनी कमजोरियां पहले पहचाननी है कि मेरी कमजोरियां क्या है।
सचेत रहना,
कमजोरियां पहले पहचान लेनी है, और फिर उस कमजोरियों के मुताबिक उस वातावरण से दूर रहना है जिसकी वजह से आप भी उस वातावरण में बह के पाप कर लो। कोई बीमारी होती है ना, जैसे टीवी लगा लो या मलेरिया लगा लो, हाँ मलेरिया लगा लो। अब जब मलेरिया कब होता है? जब आपके घर के इर्द गिर्द बहुत गंदगी है, मच्छर पैदा होगा, और डॉक्टर आपको क्या बोलेगा, सलाह देगा कि आप मच्छर जहाँ मच्छर रहत जगह है वहाँ थोड़े दिन रहो ताकि आपकी रिकवरी हो जाए। तो दवाई के साथ साथ वातावरण भी जरूरी है, ठीक है। तो ये इसी आत्मिक चीजों पे भी लागू होती है। जब हमारे में आत्मिक बीमारियां या कमजोरियां हैं, तो जब हम उसी वातावरण में बैठे रहेंगे, मान लो मेरी प्रॉब्लम है कि मुझे दारू की लत है, या मुझे प्रॉब्लम है मैं मूवीज बहुत देखता हूँ, मैं ज़्यादा समय मूवीज में देखने के वेस्ट करता हूँ, तो अगर मैं अपना घर थिएटर के बाजू में रखूँगा तो मैं तो फिर वो हो गया जो जो उसकी क्या बोलते हैं परीक्षा के बीच में बैठा हुआ हूँ। तो मुझे क्या करना है, चलो ये घर बेच के मैं कहीं दूर चला जाता हूँ जहाँ से थिएटर में आना बड़ा असंभव लगे, ठीक है। या फिर नेट पे, आजकल युवा लोगों को नेट पे मूवीज डाउनलोड करके देखते हैं, ये वो सब करते हैं, ये बीमारियां हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों को अवॉइड करना है ताकि हमारा ध्यान आत्मिक चीज़ों पे लगे, हम आत्मिक बने। ये बहुत बड़ी एक लड़ाई है, उस पर जय प्राप्त करना पिता परमेश्वर की शक्ति के बिना बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो ये है छठा पाठ, हमें बुराई से हमें परीक्षा में ना डाल। परीक्षा में ना डाल का मतलब क्या है, हमें परीक्षा में अकेला मत छोड़, और जो दूसरी तरह की परीक्षाएं हैं उनसे हमें बचा के रख, जो शारीरिक कमजोरियों की वजह से हम फंस जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद सातवां सबक क्या है, कुलुसिया 3:17 पढ़ लो।
जी, वचन में या काम में जो कुछ भी करो सब प्रभु यीशु के नाम से करो।
प्रभु यीशु मसीह के नाम से करो, मतलब अगर आप बोल रहे हो शब्द या काम परमेश्वर के लिए, जो कुछ भी करना है प्रभु यीशु मसीह के जरिए करना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। यूहन्ना 15:5 पढ़ लो।
मैं दाखलता हूँ, तुम डालिया हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, मैं बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते।
तो ये है अंतिम सोच, कि जो प्रार्थना जो कुछ भी करनी है एंड में पुत्र के जरिए, जो हमारा हेड है, कलीसिया का हेड है, उसके जरिए ये सब कुछ मांगते हैं आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। तो ये अंत में, क्योंकि उसके बिना हम कुछ नहीं कर सकते, उसके बिना ना तो हमारी प्रार्थना स्वीकार होगी। अब समझ हो गया, क्लियर बता, उसके बिना हमारी प्रार्थना स्वीकार तो छोड़ो, सुनी नहीं जाएगी, पहुंचेगी पहुंचेगी ही नहीं, ठीक है। हाँ, तो ये है प्रार्थना का तरीका प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया। अब इस तरीके को आप लिख लो और ऐसे स्टेप बाय स्टेप प्रार्थना करो, देखो कितना बढ़िया आपका वो हो जाएगा, ठीक है। और जो कुछ भी मांगना है प्रभु यीशु मसीह के जरिए ही मांगना है, परमेश्वर के दया के सिंहासन के सामने जाना है, प्रभु यीशु मसीह के जरिए से जाना है, क्योंकि उसके बलिदान के द्वारा ही हमें पुत्र होने का अधिकार मिला है। हम परमेश्वर की नज़र में धर्मी उसके लहू से होते हैं जब हम विश्वास दिखाते हैं। और अंत में एक चीज पढ़ते हैं, पौलुस क्या बोलता है, 1 थिस्सलुनीकियों 5:17।
निरंतर प्रार्थना में लगे रहो।
निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, अभी इसका मतलब मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बोला था, इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने काम आपकी जिम्मेदारियां छोड़ के प्रार्थना में लगे रहो। यही पौलुस जो ये बोल रहा है 1 थिस्सलुनीकियों 5:8 में, देख लो क्या बोल रहा है।
5:8 पर हम जो दिन के हैं विश्वास और प्रेम की झिलम पहनकर,
और 1 थिस्सलुनीकियों 5:8
पर यदि कोई अपनों की और मिस करके अपने घराने की चिंता ना करे तो वे विश्वास से मुकर गया है और अविश्वासी से भी बुरा बन गया है।
तो देखो, एक मसीही की ये जिम्मेदारी है कि वो अपने परिवार के लिए जो जरूरी चीज है वो मुहैया करवाए। तो अगर हम सब काम का छोड़ के प्रार्थना में बैठ गए, कोई काम कार पे नहीं जा रहे हैं, तो इसका मतलब हम विश्वास से मुकर गए हैं। अभी निरंतर प्रार्थना में लगे रहो का मतलब क्या है? आप कलीसिया के तौर पे प्रार्थना करो, जब भाई बहन इकट्ठा होते हैं। आप एक अपने परिवार की प्रार्थना करो, आप अपनी खुद की प्रार्थना करो, और जब भी आपको समय मिले, चाहे 2 मिनट का, 5 मिनट का, काम पे आप फ्री बैठे हो, प्रार्थना में बैठ जाओ। तो ये है उसका निरंतर प्रार्थना में लगे रहो कहने का मतलब। उसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ छोड़ छाड़ के आप प्रार्थना करनी शुरू कर लो, ठीक है। और अंत में एक बात प्रभु यीशु मसीह के बारे में पढ़ते हैं, बहुत सुंदर उदाहरण प्रभु यीशु मसीह ने छोड़ी है हमारे सर ने, इब्रानियों 5:7 में।
5:7, यीशु ने अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार पुकार के और आंसू बहा बहा कर उससे जो उसकी मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थना और विनती की और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई।
तो प्रार्थना और विनती करता था प्रभु यीशु मसीह अपने दिनों में करता रहा, ठीक है। और यही हमें भी करना है। लेकिन एक बात और मैं आपको चेतावनी के तौर पे बोलता हूँ, जब परमेश्वर के सामने जाना है तो परमेश्वर के सामने अपनी बात नहीं मनवानी है, परमेश्वर की बात माननी है। परमेश्वर के सामने विनती करनी है, ना कि ऑर्डर्स देने हैं, जो आजकल हम देखते हैं, मैं प्रभु के नाम पे ऑर्डर हुक्म देता हूँ इसको छोड़ के अभी निकल जा। प्रभु यीशु मसीह जब माइकल जब आए मूसा की लाश लेने, शैतान नहीं छोड़ रहा था, क्या बोला? मेरा प्रभु तेरा न्याय करे, ठीक है। हमें वो कुछ ये अधिकार नहीं है। हम प्रार्थना में परमेश्वर के सामने अगर ऐसे बैठ के बात करें, ओ दुष्ट आत्मा मत, प्रभु यीशु मसीह के नाम से बोलता हूँ निकल जा, ऐसे परमेश्वर के सामने बात करोगे आप? हम ये प्रार्थना कर सके, परमेश्वर आप जानते हो इसकी स्थिति, और पर क्या पता परमेश्वर ने किस योजना के तहत उसको बीमारी में रखा है या दुष्ट आत्मा छोड़ी है, छोड़ी थी उस पे भी, सॉल पे छोड़ी थी ना, ठीक है। अब हम परमेश्वर के सामने खड़ा होकर ये बोल रहे हैं, परमेश्वर आप गलत हो, मैं सही हूं, मैं धर्मी हूं, आप इस पे दया नहीं कर रहे हो, मैं इस पे दया करके इसके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। ऐसा नहीं करना चाहिए, परमेश्वर को ऑर्डर नहीं देना है, परमेश्वर को विनती करनी, परमेश्वर अगर आपकी इच्छा हो तो इस बहन या भाई पे आपकी दया हो जाए, खुद ही वो नहीं बन जाना है, ये प्रार्थना नहीं है फिर, समझ गया, ये प्रार्थना नहीं है, ठीक है। तो ये सब कुछ सीखना है, परमेश्वर के सामने आप बात कर रहे हो, और जब न्याय की भी बात हो, चलो क्लास ख़त्म करके मैं बात करता हूँ। सो इसी के साथ प्यारे भाई और बहनों, हमारा प्रार्थना का सबक यहाँ पे ही ख़त्म होता है, और परमेश्वर हम सबको आशीर्वाद करे।